ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे, यह तो जैसे देवता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर है, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो। ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव मीठा होना चाहिए और शांत। सर्टिफिकेट कौन सा देना है? दैवी मैनर्स का। बाप जो श्रृंगार कर रहा है, उस श्रृंगार तुम्हें दिखना चाहिए। बाप ने जो कर्म सिखलाए हैं, उठना बैठना हर बात के, वो तुम्हें दिखने चाहिए। देखो बच्चे, सबसे पहला श्रृंगार है, तुम आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में रहना, स्वयं को आत्मा समझना, आत्मा समझकर हर कर्म करना, यह पहला श्रृंगार है। सबसे बड़ी बात है बच्चे, देह अभिमान के कारण श्रृंगार नहीं हो पा रहा है। आत्मा अभिमानी बनेंगे, श्रृंगार अपने आप हो जाएगा। जैसे बच्चे किसी नाटक में कोई मनुष्य किसी जानवर का रोल करता है, जानवर बनता है, उसको जानवर का कपड़ा लाते हैं, शेर का, हाथी का, हाथी का हो तो सूंड लगाते हैं, कपड़ा लाते हैं, तो उस हाथी को, शेर को, जानवर को मनुष्य का श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। उसको गहने नहीं पहना सकते हैं, वस्त्र नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि उस घड़ी वो हाथी, शेर या जानवर के कॉन्शियसनेस में, उसके नाटक में है। वैसी बात है बच्चे, जब तक तुम देह अभिमान नहीं छोड़ते, तब तक तुम्हारा श्रृंगार नहीं हो सकता। आत्मा अभिमानी बनो बच्चे। आत्मा अभिमानी बनने के बाद श्रृंगार अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं? जानवर का जो कपड़ा पहना है उसे उतार नहीं रहे और मनुष्य का श्रृंगार करने की चेष्टा कर रहे हैं। जानवर को कितने भी गहने पहनाओ, शोभेगा नहीं शोभेगा, कितने भी ऊंचे वस्त्र पहनाओ नहीं शोभेगा। उसी प्रकार जब तक देह अभिमान के वस्त्र नहीं उतारते, तब तक दैवी मैनर्स धारण नहीं कर पाओगे। दैवी मैनर्स आत्मा धारण करती है। बच्चे पहले आत्मा अभिमानी बनो, तुम्हें संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा अभिमानी अवस्था में हो। बच्चे, मीठा स्वभाव किसका है? आत्मा का। शांत स्वभाव किसका है? आत्मा का। शरीर का कोई भाव स्वभाव नहीं होता बच्चे, शरीर के बस संस्कार होते हैं, वो भी जितनी बार रिपीट करोगे शरीर अपने आप उसे पक्का कर लेता है। स्वभाव तो आत्मा का होता है। तो बच्चे, बाप जो श्रृंगार कर रहा है उसे धारण करो, उसके लिए अपनी स्थिति में आओ। अपना पहला श्रृंगार है कि हम आत्मा है, पहला श्रृंगार। बाकी सब इसके बाद आते हैं। तुम उनको पहले नहीं लाओ, जो पहला है उसे पहला रखो। समझ की बात है? तो बच्चे, देखो कितनी सारी बातें हैं, विचार करो अपने से, कितनी बातें हैं। बाप ने क्या क्या सिखाया है? क्या हमने धारण किया है? हम अपने को चेक करें। अगर श्रृंगार को धारण करेंगे तो बाप के मददगार बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। सबको कैसे लगना चाहिए? बोल चाल देवता जैसा। असुर जरा भी ना निकले। कभी कभी असुर निकलता है, कभी उदास होते हैं, नाराज होते हैं, असुर निकलता है। बच्चे, सब ड्रामा है ना, तो इस ड्रामा में क्या उदास होना, क्या नाराज होना। इस संगम पर बच्चे देखो, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, बोल पर, दृष्टि, विचार, वृत्ति पर। ये ऐसे हो कि यह ईश्वर तुमसे खुश हो जाए। संगम पर, समझ की बात है? अपने श्रृंगार से ईश्वर को खुश करना है। उसी ने दिया है श्रृंगार, पर श्रृंगार से अगर उसे खुश कर पाए तो जैसे बाबा कहते हैं, तुमने जीत लिया ईश्वर को। संगम पर ईश्वर को जीतना है, उसके दिए हुए श्रृंगार को धारण कर। एक एक बात है बच्चे, समझ जाए। देखो, विचार करो, जितना हो अपने से करो, पर श्रृंगार करो। श्रृंगार करेंगे तो मददगार बन पाएंगे बाप के। देखो बच्चे, बिना श्रृंगार के बाप मददगार नहीं बना पाएगा। हर किसी को लगता है कि हम ईश्वर के मददगार बने, पर बच्चे पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने उसने बताई हुई बातें, उसने दिया हुआ श्रृंगार धारण किया है तो ही तुम मददगार बन पाओगे, वरना तुम नहीं मदद कर पाओगे ईश्वर को। वो अशुद्ध मदद होगी। हाथी का कपड़ा पहन के क्या मदद करोगे? शेर का कपड़ा पहन के, जानवर का कपड़ा पहन के क्या मदद करोगे? मदद करना है तो अपने कॉन्शियसनेस में आओ, और सदा के लिए। थोड़े समय के लिए नहीं बच्चे, सदा के लिए। बच्चे, इस बात पर ध्यान दो, जो बच्चे आत्मिक स्थिति में हैं वही बाप के मददगार बनेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति वालों के अंदर माया नहीं है, डेमॉन्स नहीं है। बच्चे, डेमॉन्स हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके बाल बच्चे। ये अति सूक्ष्म हैं, ये भटकते रहते हैं वायुमंडल में, किसी को देखा उनमें प्रवेश हो जाते हैं, और एक बार प्रवेश हुए फिर फिर उनसे जो कराना है करा देते हैं, कर्म करते हैं, बोल बोलते हैं, उनकी दृष्टि, विचार, वाइब्रेशंस वैसे ही होते हैं। ये अगर प्रवेश है तो तुम मेरे मददगार कैसे बनोगे बच्चे, क्योंकि तुम परवश हो, पॉसिबल नहीं है मददगार बनना। इनसे मुक्त हो जाओ। इनसे मुक्त होने का उपाय है आत्मिक स्थिति में आना। जैसे तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओगे ये दूर चले जाएंगे, ये तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे, बल्कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ से भी सभी से ये निकल जाएंगे। इन्हें भी मुक्ति चाहिए, ये भी थक गए हैं, अपना पार्ट बजाते हैं। तो बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ, सदा चेक करना बच्चे, खाते पीते उठते बैठते, कहीं मुझ में कोई डेमोन तो नहीं है, कोई इविल तो नहीं है, सदा चेक करना। बच्चे जब भी तुम नाराज होते हो तुम्हारे अंदर नाराजगी का डेमोन आता है ये अपना पार्ट बजा रहे बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं चलता। कभी कभी तुम्हें लगता है ये तो तुम्हारा स्वभाव और संस्कार है। नहीं बच्चे, आत्मा का ऐसा स्वभाव संस्कार नहीं है, ये डेमोनिक ऊर्जा है जो प्रवेश होती है, अचानक से होती है। अगर तुम लो फ्रिक्वेंसी में हो तो तुम में प्रवेश हो जाएगी और फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम परवश रहेंगे, तुम चाह कर भी कुछ नहीं करेंगे, वो परवश होता है, पजेस्ट है वो, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति में आ जाओ। जैसे तुम आत्मिक स्थिति में आते हो उस घड़ी ये नहीं रहते तुम्हारे अंदर, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा इतनी तेज है कि ये मुक्त हो जाते हैं। समझ है बच्चे, घड़ी घड़ी आते हैं, हर जगह पर है, सृष्टि के कण कण में है, पानी के बूंद बूंद में है, हर जगह है, हवा में है, पानी में है, अन्न में है, हर जगह है इनकी ऊर्जा, सर्वव्यापी है ये, तुम्हारे वस्त्र में है, तुम्हारे देह में है, हर सेल में है। उपाय एक ही है बच्चे, आत्मिक स्थिति, और कोई उपाय नहीं है, एक ही वैक्सीन है आत्मिक स्थिति की, जिससे तुम्हारे अंदर जागृत नहीं होंगे। समझ की बात है बच्चे, सदा चेक करना, जरा भी नाराजगी उदासी आई जागृत हुआ, अब ये क्या करेगा, विनाश करेगा, तुम्हारा भी और सबका भी। इसलिए बाबा कहते हैं सदा खुश रहो बच्चे, जब खुशी में होते हो ये नहीं रहते, जैसे खुशी चली गई ये इमर्ज हो जाते हैं तुरंत। इसलिए बच्चे ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो जाए संकल्प नहीं कट कर जाए हर रूप से, कि अंत तक तुम इन्हें लेकर ही जियो और फिर जी ही ना पाओ। हर बात में बच्चे ध्यान दो इस बात पर, सारी बीमारियों के रूप में भी यही होते हैं, हर रूप से यही है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसलिए बाप कहता है आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अपने सत्य स्वरूप में आओ, और कोई उपाय नहीं है बच्चे। क्या क्या करोगे तुम, कुछ भी तो नहीं है करने जैसा। इसके अलावा जो कुछ है वो सब टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए करोगे तुम्हें लगेगा हाँ ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, पर बच्चे नहीं, बीमारी है अंदर, बस दबी हुई है, वापस ऊपर उठेगी। इसलिए बच्चे स्वभाव देवताएं बनाओ, मीठा रहे, शांत रहे, कुछ भी हो जाए हमें मीठा स्वभाव बदलना नहीं है। देखो संकल्प नहीं कट कर रहे हर रूप से, कोई थप्पड़ भी मारे, अपमान भी करे, फिर भी एकदम शांत रहना है। आत्मा का स्वभाव ही मीठा और शांत है ना, तो अपना स्वभाव क्यों भूले। तो बच्चे इस बात पर ध्यान दो, अपना स्वभाव नहीं भूलना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो। बच्चे जिनका स्वभाव देवताई होता है वही मददगार बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते चाहकर भी। देवताई स्वभाव चाहिए। तुम सर्विस कितनी करते हो इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा स्वभाव कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। शांत हो, एकदम मीठा हो, तो ही तुम्हारे सर्विस की मदद हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। बच्चे तुम 36 से मदद करते रहो फिर भी तुम्हारी मदद नहीं हो पाएगी, अगर स्वभाव देवताई नहीं है तो। लाख कोशिश करो, लाख करो, बाप मदद स्वीकार नहीं करेगा। जैसे बच्चे पाप का धन यज्ञ में स्वीकार नहीं हो सकता, उस प्रकार आसुरी स्वभाव से कितनी भी बड़ी दैवी सेवा तुमने की है बाप स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा। उस सेवा को विश्व सेवा होने नहीं देगा बाप। क्यों? क्योंकि अंदर असुर बैठा है। एक्चुअली वो असुर ने सेवा की है, तुम्हारे असुरी स्वभाव ने सेवा की है। अभी वो सेवा अगर मैं स्वीकार करूं तो उससे देवता जन्मेंगे या असुर जन्मेंगे? असुर की सेवा से असुर ही जन्मेंगे। समझ है बच्चे? असुरी सेवा है वो, असुर ही जन्मेगा, इसलिए बाप स्वीकार नहीं करेगा। तुम अगर बाप के मददगार बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपना स्वभाव देवताई बनाओ, अपने संस्कार देवताई बनाओ, मीठा हो स्वभाव, शांत हो, बोल चाल देवताई हो। पहले ऐसे बनो, फिर मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूँगा, वरना नहीं करूँगा। बच्चे कितनी भी सेवा करो तुम, नहीं करूँगा। समझ की बात है? इसलिए देखो तुम पर है निर्भर। ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो, कभी थकना नहीं है ईश्वरीय सर्विस से। यज्ञ सेवा से स्नेह होना चाहिए, स्नेह देवताओं का स्वभाव है, संस्कार है। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं, ऐसे बच्चों को देखकर खुशी होती है। तो बच्चे पहले स्वभाव देवताई, देखो अपने को चेक करो, तुम्हारा स्वभाव देवताई है क्या, चेक करो। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, गीत बजा दीजिए। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवान वाच, जबकि भक्त सम्मुख है और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं व ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वह देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है, वह है स्वर्ग का रचयिता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है, तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं, भक्त भगवान को याद करते हैं, आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे, वही रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाने लिए आकर राजयोग सिखाते हैं, कहते हैं बाप को और विश्व के मालिकपने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है तो समझा जाता है परमपिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है, बाप बेहद का मालिक है, तो ज़रूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। बच्चे, यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है, अभी रहने जैसा रहा है क्या? विचार करो, ये तुम्हारा शरीर बार बार बीमार पड़ता है, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार सब अशुद्ध हो चुका है बच्चे, सब कुछ। धन भी पतित हो चुका है, रिश्ते भी खराब हो चुके हैं, अध्यात्म भी बिगड़ चुका है। एक बाप सिखला रहा है वो बात अलग है, बाकी सारे विश्व का बिगड़ चुका है, विज्ञान भी विनाशकारी हो चुका है, कुछ भी तो यहाँ ठीक नहीं रहा है, और इस दुनिया में तुम्हें रस आ रहा है। बाबा कहते कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सब बिगड़ चुका है ना, यहाँ कैसे रस आ सकता है, नहीं आना चाहिए। रस आ रहा है माना तुम इस विश्व को छोड़ने को तैयार नहीं हो, समझ है बच्चे? हर चीज़ खराब हो चुकी है, यहाँ पर शरीर भी पूरा गंदा हो चुका है, शरीर से हर रूप से गंदगी ही निकलती है, भल बाहरी रूप से दिखावे के रूप से कितना भी रैपर सुंदर हो, बाहरी रूप से, अंदर से तो गंदा ही हो चुका है। क्या अच्छा रहा है बच्चे यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं, सब खोखला हो चुका है, खाली हो चुका है, कोई जान नहीं बची है, और उसमें तुम्हारी जान अटकी है। बच्चे विचार करो अपने को, विचार दो ये संसार कैसा हुआ है, क्या था जब बाप ने रचा था। बच्चे देखो, जब तक तुम्हारा मन लगेगा इस संसार में, मैं विनाश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा मन लगा है और तुम्हें मैं दुख नहीं देना चाहता। विनाश तभी होगा जब तुम्हारा इस संसार से मन उठेगा, लगेगा नहीं चाहिए ये संसार, तब विनाश हो जाएगा। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, किसी के मन के विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहता, तुम्हारे लिए ही अच्छा कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें दुखी बनाकर अच्छा नहीं करना चाहता। जब तुम दिल से कहोगे ये संसार नहीं चाहिए बाबा, तब मैं विनाश शुरू करूंगा, समझे, परिवर्तन शुरू करूंगा। पर तुम्हारी दिल इसी में लगी है, मैं दिल को दुखाना नहीं चाहता। बच्चे, ये रहने जैसा नहीं रहा है, यह कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, ध्यान देना इस बात पर। बाप बेहद का मालिक है तो ज़रूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे, कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे, वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं, यह तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पार्ट बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नरक रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चों को वह नशा नहीं चढ़ता है। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना, आत्मा का शरीर बड़ा होता है, तो इन ऑर्गन्स से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूँ वा फलाना हूँ। बालिग अवस्था में आने से समझते हैं हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता, कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बच्चे इस बात को समझो, बाप मालिक नहीं बनता, कभी नहीं बनता। यही कारण है बाप इस सृष्टि में सुखी नहीं रह सकता। ये सूत्र है, बाप को कोई सुखी नहीं कर सकता। बाप सबको सुखी करने आया है, बाप को कोई नहीं कर सकता। और विश्व के सभी बच्चे मेरे हैं। बच्चे चिंता नहीं करना, तुमसे ऐसे कोई कर्म होते हैं जिससे तुम्हें लगता है तुमने बाप को दुख दिया, फिक्र नहीं करना। बाप को कोई सुख नहीं दे सकता, ध्यान में रखना। पार्टी नहीं है मेरा किसी से सुख लेने का, दे भी नहीं सकता कोई, क्योंकि मैं देने आया हूं। मेरा पार्ट है तुमसे दुख लेना और तुम्हें सुख देना, ये मेरा पार्ट है। तुम दुख ही दोगे, फिक्र नहीं करो इस बात में, वो भी तुम्हारा पार्ट है, चिंता नहीं करना। ऐसे ही चलेगा, इसलिए बच्चे मौज करो, सुखी हो जाओ। समझ की बात है, बाप विश्व की राजाई नहीं करता। राजाई करना, सुखी होना बच्चों का काम है। बच्चे सुख भोगे, मौज करें, आनंद करें, समझ की बातें। तुम चाहो ना चाहो, बाप से तुम्हें सुखी मिलेगा और तुमसे बाप को दुखी मिलेगा। चाहो ना चाहो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, समझ की बात है। समझदार बच्चे समझ जाते हैं, इसलिए बच्चे कभी ऐसी कोई बात हो तो दुखी नहीं होना, बस तुम सुखी रहना। तुमसे मुझे दुख मिलता है इसलिए मैं कभी दुखी नहीं होता, तुम दुखी हो इसलिए मैं दुखी होता हूं। मेरा पार्टी है दुख लेना और सामने वाले को सुखी करना। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, ये मेरी समस्या है, ये मेरी आपत्ति है। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, ये मेरी समस्या है। तो बच्चे बस राजाई भोगो, सुखी हो जाओ, सदा सुखी रहो, मौज में रहो, खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ, सदा के लिए मौज मनाओ। ऐसे चलो, बाप बैठा है, फिकर नहीं करो, अपने दुख बाप को देना और बाप से सदा सुख लेना, समझ है। ऐसे बात है बच्चे, बाप ऐसे ही चलता है, बाप का पार्ट ही ऐसे है, समझ है। बच्चे कितना भी दुख दे, बाप सुख देने की ही चेष्टा करेगा बच्चों को हर रूप से। अभी बच्चे लेते नहीं, उसको बाप कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चों के ऊपर निर्भर है लेना, समझ है। सुख तो दे रहा है बाप, हर रूप से दे रहा है, लेना तुम पर है। दुनिया में आज बहुत दुख है बच्चे, किसी की टांग टूटी है, दर्द में परेशान है, किसी के हाथ टूटे हैं, दर्द में परेशान है, किसी का मन अस्वस्थ है, दुख में परेशान है, किसी के घर में धन की समस्या है, पारिवारिक झगड़े हैं, अध्यात्म में परेशान है, सामाजिक रूप से परेशान है, दुख बहुत है बच्चे समाज में आज, तुम्हें कल्पना भी नहीं है कितना दुख है, बहुत है, समझ है बच्चे। रोज कितनी हत्याएं हो रही है, कितनी चोरी चकारी हो रही है, कितनी आगजनी हो रही है, दुख बहुत है। तुम सुखी हो, सुख भोगो, सुखी रहो। हर कोई परेशान है दुनिया में, बस बाप के बच्चे सुखी है। हर कोई परेशान है, जिनके माता पिता ज्ञान में नहीं है, पूछो उन्हें सुखी हो क्या, नहीं है। सब है उनके पास, सब ठीक ठाक है, फिर भी कहेंगे हम परेशान हैं, समझ है बच्चे। सुखी सिर्फ बाप के बच्चे हैं, जो बाप के बने वही सुखी है, बाकी सभी परेशान हैं। इसलिए बच्चे जो सुख मिला है भोगो, आनंद लो और दूसरों को भी सुखी बनाओ, उनको भी परेशानी से मुक्त करो, समझ है बच्चे। समझदार बनो, गफलत नहीं करो इस बात में। कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ। सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाप विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़े ही हैं। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रचता ज़रूर गॉड को कहा जाएगा। वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नरक कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है। माया खुशी में रहने नहीं देती है। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं। देह अभिमान आने से फिर सब विकार सामना करते हैं। बच्चे देखो, खुशी आत्मा अभिमानी अवस्था में है। अपने को आत्मा समझ कर चलो, सदा खुश रहोगे। तुम खुश रहने की चेष्टा कर रहे हो देह अभिमान में, कैसे पॉसिबल है बच्चे? नॉट पॉसिबल। खुशी तो आत्मा का स्वभाव संस्कार है, देह का नहीं है बच्चे। देह अभिमानी बनकर खुश नहीं रह सकते, कैसे पॉसिबल है? आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा अभिमानी, मैं आत्मा हूँ। देखो बच्चे, देह अभिमान आता है तो सब विकार आ जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हो, सारे विकार आएंगे देहाभिमान में। आत्माभिमानी बनो, सारे विकार मुक्त हो जाएंगे। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते हैं आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुमको लायक बनाता हूँ। तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं? तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई को धारणा नहीं होती है क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल है, वह संस्कार है। ऐसे गर्म तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है, उनका भी उद्धार होता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना। बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी। बच्चे चेक करो अपने को। बाप जो कहता है तुम धारण करते हो क्या या नहीं करते हो? गर्म तवे पर पानी डाला, क्या होगा? उड़ जाएगा। वैसे बाप कितना भी ज्ञान सुनाए अंदर नहीं जाएगा, धारणा में नहीं आएगा। गरम तवा है ना, सब उड़ जाएगा। जब मुरली में बैठे हाजी हाजी करेंगे, वाह वाह करेंगे, मुरली समाप्त, ज्ञान समाप्त। ऐसी स्थिति है, ऐसी अवस्था हो जाती है। बच्चे तुम चिंतन नहीं करते, जब तक तुम चिंतन नहीं करते कैसे पता चलेगा पानी ठहरा है या उड़ गया। चिंतन किया मन पानी ठहरा है, चिंतन करोगे तो धारणा होगी वरना नहीं होगी। बच्चे ये धारणा अपने आप नहीं होते। बच्चे एक निवाला खाते भी तुम चिंतन करते हो किस सब्जी के साथ कौन सा निवाला खाना है, सेकंड का चिंतन होता है, तब तुम उस सब्जी के साथ निवाला उठाते हो, दाल के साथ निवाला उठाते हो। बिना चिंतन के तुम कुछ नहीं करते। यहाँ पर चाय पीनी है तो भी फूंक मार रहे हो, चिंतन है गर्म है चाय इसलिए फूंक मारते हो और फिर चाय पीते हो। सभी बातों में तुम चिंतन करते हो और चिंतन करके कर्म करते हो, यहाँ क्यों नहीं करते हो? कोई भी कर्म करने से पहले एक सेकंड चिंतन करो, ये कर्म श्रीमत अनुसार है, ये मेरा उठना बैठना श्रीमत अनुसार है, चिंतन करो, एक सेकंड के लिए करो। ये खाना पीना चिंतन करो श्रीमत अनुसार है, ये जागना सोना चिंतन करो श्रीमत अनुसार है, ये मेरा चलना बैठना श्रीमत अनुसार है। हर बात के लिए चिंतन करो श्रीमत अनुसार है क्या, उत्तर मिल जाएगा बच्चे और श्रीमत अनुसार हो भी जाएगा, क्योंकि ज्ञान है अंदर, ज्ञान है। निवाले में कंकड़ पत्थर आएगा, तुम ऐसे निवाला नहीं खाओगे कितनी भी भूख लगे, कंकड़ पत्थर को निकालोगे बच्चे, तुम संकल्प निकट कर रहे कंकड़ पत्थर के लिए, समझ की बात है बच्चे। तुम चिंतन करो, जो बच्चा चिंतन करता है उसके कर्म अपने आप बाप समान हो जाते हैं। चिंतन करना है एक सेकंड पहले, संसार की हर बात में तुम चिंतन करते हो बस यहाँ नहीं करते हो, चिंतन करो। बच्चों को कितना भी समझाते हैं परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी, तो समझा जाता है उस वासना यानी संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना यानी संस्कार ले जाते हैं ना, जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा, यह बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं, वह जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी सी सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं, धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं। बच्चे देखो, विचार करो, ज्ञान की बाप सोटी लगाता है, मना सदगुरु स्वरूप में महाकाल स्वरूप में ज्ञान देता है, कहीं नाराज तो नहीं होते बाप पर? फट पड़ना मना क्या है, नाराज होना बच्चे, बाप ने ज्ञान की सोटी लगाई, कपड़े को पटकते हैं ना धोने के लिए, वैसे किसके लिए लगाए बच्चे? अंदर के अवगुणों के लिए लगाए। तुमसे तो बाप का बेहद प्यार है, आत्मा को सोटी कैसे लगा सकता है बाप? विकारों को निकाल रहा है, मैल को निकाल रहा है बच्चे, पर तुम कभी नाराज हो जाते हो तो बाप कपड़े को बाजू रख देता है। बाप दुखी नहीं बनाना चाहता, किसी को दुखी नहीं करना चाहता, समझ है? जो पेशेंट इंजेक्शन के लिए ऊपर नीचे करे, मना लगाने ही ना दे, क्या डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा? नहीं, कहेगा ये टैबलेट ले लो और खाते रहो, थोड़ा समय जाएगा पर ठीक हो जाओगे। इंजेक्शन लगाते तो आज ही ठीक हो जाते, पर अभी तुमसे सहन नहीं होता तो क्या करूं मैं? ये टैबलेट लो, मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकता, कोई ना कोई उपाय देना पड़ेगा। अच्छा नहीं कि मैं ऐसे ही तुम्हें जाने दूँ, ठीक है ये टैबलेट खा लो। समय लगता है पर वही इंजेक्शन लगाए तो तुरंत ठीक होगा, समझ की बात है। कोई कोई कपड़े होते हैं हाथ से कितना धोओगे, पटकना पड़ता ही है जोर जोर से, कोई बड़ी चद्दर होती है, ब्लैंकेट होता है, जैसे कपड़ा मना कमीज धोते हैं वैसे नहीं धो सकते, उसे उसे पटकना ही पड़ता है तब वो साफ निकलते हैं, उस प्रकार की बात है बच्चे। ऐसे नहीं बनो कि बाप थोड़ी सी सोटी लगाए और तुम नाराज हो जाओ, फट जाओ, ऐसे नहीं बनो। सोटी तो लगेगी ही, वरना कपड़ा कैसे साफ होगा बच्चे? अपने आप तो नहीं होगा, और फिर अंत तक नहीं हो पाया तो धर्मराज करेगा, वो फिर डंडा मारेगा। मना उपाय और कुछ नहीं बच्चे, सोटी लगेगी या डंडा लगेगा, मर्जी तुम्हारी है बच्चे। मैला कपड़ा धोना है, धर्मराज जब डंडा लगाता है तो दुख बहुत होता है, बहुत दुख होता है। बाप ध्यान रखता है, धर्मराज जोर से लगाएगा, बाप साफ कर रहा है और धर्मराज सजा दे रहा है, अंतर है, अंतर है दोनों में। इसलिए बच्चे कभी नाराज नहीं होना, बाप ने अगर महाकाल स्वरूप में ज्ञान दिया, सदगुरु स्वरूप में तीखे वचन कहे, नाराज नहीं होना बच्चे, ध्यान देना, तुम्हारे लिए ही बाप कर रहा है। बाप को क्या मिलेगा बताओ ना, इतना सब करके बाप को क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, पर तुम नाराज हो जाते हो, उदास हो जाते हो, फिर बाप को लगता है जाने दो, ये बच्चा जो है जैसा है ठीक है, वो जाने और धर्मराज जाने। पर बच्चे इतना पक्का है हाँ कि तुमसे विश्व सेवा नहीं होगी। जो बच्चे बाप के ज्ञान की सोटी पर नाराज हो जाते हैं, उनसे सेवा कैसे लूँ मैं बच्चे, कैसे लूँ बताओ ना? सेवा नहीं हो पाएगी तुमसे, कितने भी संकल्प उठाओ, कितना भी योग करो, मुरलिया पढ़ो, तुमसे सेवा नहीं हो पाएगी। मैं स्वीकार नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अंदर अशुद्धि है, वो तुमने निकालने नहीं दी मुझे। समझ है, किसी को बच्चे बहुत बड़ी बीमारी हुई है शरीर पर, सारे शरीर पर, क्या तुम उससे सेवा लेना स्वीकार करोगे? क्या उससे अन्न लोगे, वस्त्र लोगे, पानी लोगे, कोई सेवा लोगे? नहीं लोगे ना। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर अगर कोई बीमारी है तो तुमसे मैं विश्व सेवा कैसे कराऊंगा? क्योंकि तुम्हारी बीमारी उनको लग जाएगी। अगर मैंने बीमारी के साथ सेवा कराई तो सेवा तो हुई, उससे तुमने अन्न तो लिया लेकिन बीमारी भी आई। समझ है बच्चे, तुम अगर चाहते हो कि बाप तुमसे विश्व सेवा कराए तो पहले साफ हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, फटना नहीं। समझ है बच्चे, समझदार बनो, ध्यान दो इस बात पर, नाराज नहीं होना कभी बाप पर, और बाप के वचनों पर। कितना समय आता है बाप, थोड़े समय के लिए आता है, वो भी तुम्हारे लिए। उसमें भी क्या नाराज होना, इतना बड़ा कल्प, उसमें से इतने से समय के लिए बाप आता है और आखिरी समय में प्रत्यक्ष रूप से आता है, 24 घंटा पाठ बजाता है आखिरी समय में। अव्यक्तवाणी में भी मैंने वचन कहे कि अंत में मैं पूरे समय रहूँगा, फुल टाइम रहूँगा, इतने से समय के लिए मैं हूँ फुल टाइम। उसमें भी क्या नाराज होना बच्चे, कितने समय का मेहमान हूँ मैं, थोड़े से समय का, वो भी तुम्हारे लिए हूँ, मैं मेरे लिए नहीं आया हूँ इस सृष्टि पर। हाँ मैं मेरे लिए आया हूँ और फिर मैं नाज नखरे करूँ, तुम्हें डांट लगाओ चिल्लाओ और फिर तुम नाराज़ हो जाओ तो जायज़ है बच्चे, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें राज्य भाग्य देने के लिए, तुम्हारे अवगुण निकालने के लिए। क्योंकि बच्चे मुझे पता है, धर्मराज जब सजा देता है रूह भी कांप जाती है, आत्मा ऐसी कांपती है, कहती कि मुझे नहीं जाना है ड्रामा में, मुझे नहीं पार्ट बजाना है, आत्मा भी कांप जाती है। बहुत खतरनाक सजा है वो। इसलिए बच्चे मेरा यही शुभ संकल्प है कि बच्चे सजा से बचे, सजा से बचे, यही शुभ संकल्प है। इसलिए यहाँ शायद कभी कभी मेरे वचन तीखे लगते होंगे, हर्जाने बच्चे, पर उससे ठीक होगा सब। कोई कोई दवाई कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है, पर बच्चे खाना तो चाहिए, नहीं खाएंगे और बीमारी अगर बड़ी लगी तो मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, वो भी तड़पते तड़पते मर जाएंगे। इसलिए बच्चे नाराज नहीं होना कभी, बाप कभी कुछ ऐसे वचन कहे तो। बाप एक वचन कहता है पर तुम्हारे तीनों कालों को शुद्ध करता है, भूत वर्तमान और भविष्य। नाराज नहीं होना, ध्यान देना इस बात पर। कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी सी सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं, धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है, फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहम दिल है, माया बेरहम है, माया ने सत्यानाश कर दी है, इसलिए कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापिस ले जाने आना पड़ता है, त्रेता में कोई पतित थोड़े ही है जो त्रेता में आकर पावन बनाओ। भगवान तो है ट्रुथ, वही सत्य सुनाते हैं, तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर, विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा दे देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कहेंगे इनसे तो भूत निकला नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे, यह तो जैसे देवता है, देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है, तो बाकी का अंडरस्टूड आसुरी हुआ ना। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वह देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, दैवी स्वभाव के थे। बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है, समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। यह बाबा करके बाहर से थोड़ी खातिरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, यह है हद की दिल लेने वाला। बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं। बिगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वह आसुरी स्वभाव होता नहीं। यह कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, मेरी मत पर नहीं चल, कितने को दुख देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझाया है मैं धर्मराज हूँ। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे, अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। बाप बार बार समझाते हैं दैवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन ट्रेटर बन पड़ते हैं, ब्राह्मण कुल भूषणों को फिर तकलीफ देते हैं, उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। बाप आते हैं सदगति देने तो तुम बच्चों को दैवी गुण वाला बनना है, आपे ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं, वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे, उनको ख्याल रहता है, नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी है, सिर्फ यह निश्चय रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ, तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी, बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है पंडे को, बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूँ। तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो, एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया है, बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं, एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं, अपनी आत्मा को दुख देने लिए क्या क्या करते हैं, इनको आत्मघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं है तो आत्मा कहती है मैं दुखी हूँ। बाप आते हैं सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने, विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूँ, इसलिए मुझे मालिक कहते हैं, परंतु मैं राज्य नहीं करता हूँ, सब भक्त मुझे पूजते हैं, कहते हैं हे भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। बाप पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है, ऐसे यह चक्र फिरता है। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। कयामत का समय है, बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, सजाए खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह ज़रूर विश्व के मालिकपने का वर्षा देंगे, इतना याद रखें तो भी हंसते खेलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। दो नंबर, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान है बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करो, सारे कर्म श्रेष्ठ हो, यही ज्ञान है, इसी से भाग्य बनता है। कर्मों पर ध्यान दो। बहुत बच्चे ज्ञान पर अटेंशन देते हैं, कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं। कर्मों पर ध्यान दो, तुमसे सुख देने वाले कर्म हो, भाग्य बनेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और अपने कर्म श्रेष्ठ करो और अपना भाग्य बनाओ। किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए। अच्छे कर्मों का भाग्य जमा होना चाहिए तो बच्चे तुमसे विश्व कल्याण होगा। जिसके पास धन होता है वो सेवा कर पाता है धन से, उसी प्रकार जिसके पास अच्छे कर्मों का भाग्य होता है वो विश्व सेवा कर पाता है। जमा करो। अच्छा, ओम शांति।
स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।